पृष्ठ संख्या 34। कादंबरी में हृदय पक्ष प्राधान्य है। कवि अपने पात्रों के अंतस्तल में प्रवेश करता है, उनकी अवस्था विशेष में होने वाली मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण करता है तथा उचित पदन्यास के साथ उसकी अभिव्यक्ति करता है। बाणभट्ट ने दिखाया है कि सच्चा प्रेम कुल और समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वह संयत तथा निष्काम होता है। कवि ने जिस प्रणय की मनोरम कहानी प्रस्तुत की है, वह प्रणय भी बाहरी चाकिक्य से उत्पन्न रूप छटाक पर केवल अनुरक्ति मात्र नहीं अपितु दो सहृदय व्यक्तियों के अंतः स्थल को परस्पर बांधने वाला और अनेक जन्मों तक अपनी अभिव्यक्ति करने वाला अलौकिक आनंदोत्पादक विकार है। कादंबरी की प्रणय लीला एक जन्म से संबंध न रखकर तीन जन्मों के परिवर्तन होने पर भी अपने माधुर्य में किसी प्रकार का ह्रास अनुभव नहीं करती। शरीर का परिवर्तन भले ही हो जाए, कर्मवश प्राणी नाना योनियों में भ्रमण भले ही करता रहे, किंतु उसकी दृढ़ प्रेम सदा ही उसका अनुगमन किया करता है। कादंबरी की कथा इस महान तथ्य की सत्यता भली भांति प्रमाणित करती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि बाण के गद्य में शैली और वर्ण विषय में अद्भुत सामंजस्य है। बाणभट्ट की शैली पांचाली है। पांचाली शैली का वर्णन वर्ण विषयानुरूप पदों का विन्यास, जैसा अर्थ वैसा शब्द। यदि वर्ण विषय घनघोर अरण्यानी है तो कवि की वाणी उत्कृष्ट पदावली से मंडित है। यदि वह कामिनी के रूप लावण्य का चित्रण है तो कवि का पद विन्यास नितांत ललित तथा कमनीय है। शब्द के ऊपर अखंड साम्राज्य बाण की अन्यतम विशिष्टता है। शब्द दरिद्र कवि ही शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, परंतु शब्द का धनी कवि शब्द प्रयोग में कंजूसी नहीं करता। कादंबरी तो उस बगीचे के समान है जिसका प्रत्येक अवयव प्रत्येक वस्तु कवि के द्वारा खूब सजाई गई है और जिसमें सुंदर गुलदस्तों की बहार अपने रंग से तथा अपनी महक से पाठकों का हृदय अपनी ओर बलवत खींचती है। बाण संस्कृत भाषा के सम्राट हैं। शब्दों पर उनकी अद्भुत प्रभुता है। गद्य में अद्भुत प्रवाह है। कहीं उनका गद्य घोर शोर करने वाली बरसाती नदियों की भांति बड़े वेग से बहता है, तो कहीं वह शरतकालीन शांत सरिता के समान मंद गति से चलकर अपूर्व सौंदर्य दिखलाता है। सर्वत्र नवीन पदविन्यास, नूतन अर्थाभिव्यक्ति आलोचकों के लिए विस्मयावह आनंद का साधन बनती है। संस्कृत गद्य में कितनी ओजस्विता आ सकती है, कितना मंजूल प्रवाह हो सकता है, कितनी भावाभिव्यंजना हो सकती है, इसकी पूर्ण परिचायक बाणभट्ट की कादंबरी है। इसीलिए प्राचीन आलोचक मुग्ध होकर बाणभट्ट की स्तुति में कहते हैं। पृष्ठ संख्या 35। रुचिर स्वर वर्ण पद रस भाववती जन्मनो हरित सा किम तरुणी नहीं न ही वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। इस प्रकार बाणभट्ट के इन संगोपांग विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि परवर्ती साहित्यकारों के लिए कुछ भी लिखने या कहने को अवशेष नहीं रह जाता। कुछ परवर्तीकार कवियों ने लिखा, वह सब कुछ बाण का उच्छिष्ट या जूठन ही है। सत्यमेव बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। प्राचीन भारतीय समालोचकों ने बाणभट्ट की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। बाण के श्रृंगार वर्णन से प्रभावित होकर प्रसन्न राघवकार ने उन्हें पंच बाण की उपाधि से विभूषित किया। हृदय वसति पंच बाणस्तु बाण है। बाण की सर्वविध शैली की विशेषता के कारण श्री चंद्रदेव ने बाण को अन्य कवि रूपी हाथियों के कुंभस्थल को विदीर्ण करने वाला पंचानन अर्थात सिंह बताया है। श्लेषे केचेन शब्द गुम्फ विषये केचित् त्रसो चापरे अलंकारे कतिश्चित् शब्द विषये चान्ये कर्था वर्णने आ सर्वत्र गंभीर धीर कविता विंध्याट विचातुरी संचारी कवि कुंभ भीदरो बाणस्तु पंचानन।